ओम शांति। सर्वशक्तिमान बाबा के हम बच्चे जो साधारण दुनिया में साधारण रीति से रह रहे थे, बाबा ने हमें जगाया, अपना बनाया, गले से लगाया और बाबा हमारे में अपनी विशेषताएं भर रहे हैं। वो है अभी का संगम युग। आज का विषय है, टॉपिक है कीर्तन से कीर्तिमान। अब प्रश्न ये उठता है कि कीर्तन से कीर्तिमान बनते हैं या कीर्तिमान बच्चों का कीर्तन होता है? क्या कहेंगे?
दोनों होता है।
ओके, तो सच बात है कि कीर्तिमान बच्चों का कीर्तन होता है, लेकिन कौन से बच्चे कीर्तिमान बनते हैं? तो जैसे हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, ड्रामा का बहुत सुंदर गहरा नॉलेज दिया लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में, तो द्वापर युग से आत्मा जो है वो केंद्र बिंदु को भूल गई और केंद्र बिंदु को भूलकर विकेंद्रित हो गई, देह के आकर्षण में आ गई, रूह को भूल गई। और जैसे विकेंद्रित यह भी कह सकते हैं कि विकारों के ऊपर केंद्रित हो गई। तो क्या हो गया कि जैसे आत्मा जो है वो तन के भान में आ गई ज्यादा से ज्यादा, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे भक्ति मार्ग में जो है ना, वो जो आप संगम पर करते हो उसकी हूबहू भक्त कॉपी करते हैं। तो अभी बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा बुद्धि रूपी जो पाव है वो कभी भी श्रीमत की लकीर के बाहर न जाए, तुम्हारा मन जो है मन मना भव की स्थिति में सदा स्थित रहे। तो उन्होंने क्या किया, तन जो है वो नाचने लगा। संगम पर मन का डांस होता है और द्वापर युग में कीर्तन शब्द जो है क्या है, उसमें कीर्तन शब्द में क्या है, तन है ना, तो तन डांस करने लगा। तन जो है वो डांस करने लगा। कीर्तन शब्द का जो सही अर्थ है या परिभाषा कहो वो ये है कि एक ही गायक जो होता है वो कर ताल पर कीर्तन करता है। कर अर्थात हस्त, हस्तों के ताल पर कीर्तन करता है। और हम मन बुद्धि से बाबा को याद करते हैं। कर अर्थात हस्त और ताल माना दिल की जो लगन है, दिल की तार जो है वो बाबा से जुटी रहे, और इसीलिए करताल पर जो गायन होता है उसको कहते हैं कीर्तन। इसमें मन कहाँ है? तन शब्द तो है लेकिन मन कहाँ है, सोचने की बात है। तो ये जो कीर्तन है जो आज मंदिरों में ऐसे कीर्तिमान बच्चों का जिन्होंने संगम युग पर परमात्मा को पहचाना, न केवल पहचाना लेकिन अपने सर्व जिम्मेदारियों को कर्तव्यों को समझते हुए उसको भी अपना बनाया, उसके बन गए, उस पर बलिहार हो गए, सर्व समर्पण किया, ऐसे बच्चों का द्वापर युग और कलयुग में कीर्तन होता है। अब ये कीर्तन की एक बहुत सुंदर विशेषता है। वो विशेषता है कि कीर्तन में हमेशा दो अंग होते हैं कीर्तन के, या कहो हिस्से होते हैं दो। एक होता है पूर्व रंग और दूसरा होता है उत्तर रंग। एक होता है पूर्व रंग और दूसरा होता है उत्तर रंग। पूर्व रंग में क्या होता है कि जो भी कुछ सब्जेक्ट है या जिस भी भगवान के बारे में जिस पर बोलना है उसका सार होता है पूर्व रंग में, और उत्तर रंग में होता है उसका विस्तार, कहानियां। अब थोड़ा सा बाबा ने जो हमें बहुत सुंदर नॉलेज दिया है उस हिसाब से देखो, सृष्टि चक्र को सामने लाओ। पूर्व रंग अगर कहेंगे तो सृष्टि चक्र में जो राइट साइड है, पूर्व जो हिस्सा है, बाजू है, अंग है सृष्टि चक्र का, वो है सतयुग और त्रेतायुग, जिसमें हम बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, केंद्र बिंदु पर रहते हैं, जिसमें हम अपनी एक सर्वोच्च अवस्था में रहते हैं। और इसीलिए पूर्व रंग में कीर्तन के ज्ञान समाया हुआ है। अब आता है उत्तर रंग। उत्तर रंग में है विस्तार। सृष्टि चक्र की वाम मार्ग की, जिसमें एक बाबा कहता है कि देवत्व जो है, देवताएं जो है वो वाम मार्ग में चले गए, उनकी आत्मा की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। तो उत्तर रंग में आता है विस्तार, अर्थात ज्ञान के हिसाब से क्या कहेंगे कि जो द्वापर युग और कलयुग है वो है उत्तर रंग। उसमें क्या होता है, विस्तार होता है, भक्ति होती है। तो विस्तार होता है, विकेंद्रित होते हैं बच्चे, केंद्र बिंदु से हटते हैं, परिधि की तरफ जाते हैं, तो वो है विस्तार। अब संगम कहाँ है? सृष्टि चक्र पूर्व रंग हो गया कीर्तन का, जिसमें ज्ञान है। उत्तर रंग हो गया जिसमें ज्ञान की एक पॉइंट लेकर जैसे वो लोग विस्तार करते हैं, तो विस्तार हो गया। तो फिर है संगम। संगम पर जिन बच्चों ने भगवान को पहचाना, न केवल पहचाना लेकिन उसको अपना बनाया, उसके साथ चल रहे हैं, वो बच्चे जो है वो सचमुच कीर्तिमान होते हैं, न केवल दो युग में कीर्तिमान होते हैं लेकिन क्या कहेंगे, सब ऐसे कीर्तिमान बच्चे बैठे हैं, क्या कहेंगे, सारे कल्प में कीर्तिमान होते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए तो 3/4 सुख है, या बाबा कहते हैं कि तुम्हारा आधा कल्प जो है वो तुम ज्ञान का प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प जो है वो तुम्हारा ही गायन और पूजन होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने क्या किया, हर बात की कॉपी की। और इसीलिए कीर्तन में हमेशा वो गायन होता है, फिर वादन होता है और फिर नर्तन भी होता है। तो हम क्या करते हैं, मन बुद्धि, हमारी मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों से हम क्या करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, उसके ज्ञान का हमारे अंदर जो एक बहुत सुंदर इसेंस है, उस इसेंस को, उस खुशबू को, जैसे बाबा ने कल वरदान में कहा कि रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहे गुलाब, तो ऐसे रूहे गुलाब जो है उनका ही, ऐसे ही कीर्तिमान बच्चों का द्वापर युग और कलयुग में कीर्तन होता है। अब ये कीर्तिमान जो हम बनते हैं उसके लिए भी बहुत जरूरी है दो बातें। अब कहा जाता है क्वांटम थियरी जो है उसके भौतिक विज्ञान की, उसके अनुसार कहा जाता है कि हमारी जो ऊर्जा है, संकल्प की जो शक्ति है वो बहुत असीम है, अपार है। उस संकल्प शक्ति को आप जहां जिस दिशा में मोड़ना चाहो उस दिशा में आप उसको लेके जा सकते हैं। अब उस संकल्प शक्ति की जो एक बहुत बड़ी विशेषता है उसमें भी दो बातें जरूर चाहिए। एक बात है वो है निश्चय और दूसरी बात है वो है स्पष्टता। अब बाबा ने क्या किया कि संगम पर जिन बच्चे केंद्र से हट गए थे, जो देह अभिमान में आ गए थे, ऐसे बच्चों को पहले एहसास दिलाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। सिर्फ एहसास नहीं दिलाया लेकिन उस एहसास के साथ विश्वास दिलाया और धीरे धीरे वह एहसास, वह विश्वास आत्मविश्वास में परिवर्तन हो गया। लेकिन बाबा ने केवल आत्मा का रूखा सूखा ज्ञान नहीं दिया, बाबा ने उसके साथ हमें स्पष्टता दी। कौन सी स्पष्टता दी? कि बच्चे तुम वही देवी कुल की, देवता कुल की आत्माएं हो, तुम वही हो तत्त्वम। बाबा ने ये विश्वास दिया और स्पष्टता, केवल आत्मविश्वास होगा जिंदगी में तो नहीं चलेगा, स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कह सकते हैं कि हम केवल आत्म रूप में स्थित रहे तो फिर योग इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्पष्टता अर्थात एग्जाम्पल अगर देना हो तो हमारे सामने बाबा ने एक विजन रखा। कौन सा विजन? सतयुग का। आप कैसे थे थोड़ा सोचो, जैसे 35 mm का अगर पर्दा है, स्क्रीन है, तो कैसा चित्र दिखता है? और 70 mm का स्क्रीन है तो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? 35 mm का स्क्रीन और 70 mm का। तो वैसे हमारी जो बुद्धि है उसमें जितनी स्पष्टता होगी, जितना हमारा विजन क्लियर होगा, उस हिसाब से हमारी कीर्ति जो है वो न केवल 20 जन्म 21 जन्म लेकिन हमारी कीर्ति पूरे कल्प में रहेगी। हम पूरे कल्प में कीर्तिमान बनेंगे और ये जो स्पष्टता है वो है नॉलेज के आधार पर। बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे चार सत्ताएं द्वापर युग से चलती है। एक है राज्य सत्ता, दूसरी है प्रजा की सत्ता, तीसरी है धर्म सत्ता और चौथी है भक्ति की सत्ता। लेकिन जो द्वापर युग में और कलयुग में भक्ति की सत्ता चलती है उसमें एक ही फर्क है कि उसमें अंधश्रद्धा है, न केवल श्रद्धा है लेकिन आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, जिसका ही मिसाल है महाभारत में कौन? गांधारी का मिसाल है। तो कहा जाता है ना कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, उसमें ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गांधारी कभी नहीं बनना। गांधारी माना वो लोग जिन्हें आंखें होते हुए भी, आंखों पर जिन्होंने पट्टी बांधी है, ज्ञान होते हुए भी। तो ये जो बात है कि निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उसके साथ ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए, ऐसे बच्चे ही कीर्तिमान बन सकते हैं, ऐसे ही बच्चों का कीर्तन होता है, गायन होता है। अब यहाँ हमें याद आता है वो है इंफोसिस के सर्वे सर्वा या संस्थापक नारायण मूर्ति, श्री नारायण मूर्ति। आपको पता है आज इंफोसिस कंपनी का विस्तार कितना है देश तथा विदेश में। उनकी एक विशेषता, कीर्तिमान बनने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी तीन बातें हैं। एक वो है संकल्प, जो कि यहाँ वो संकल्प जो बात की वो बात कार्य में परिणित करना, अर्थात जिसको बाबा कहते हैं संकल्प बोल और कर्म तीनों में समानता हो, हार्मनी हो। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं मेरे बच्चे जो है ना वो संकल्प बहुत श्रेष्ठ करते हैं, बहुत ऊंचे करते हैं, लेकिन जब वो संकल्प बोल और कर्म में आते हैं तब उसमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, थोड़ा फर्क आ जाता है। तो इसीलिए भक्तों ने क्या किया कि तीनों को मिलाकर उन्होंने करताल के ताल पर भजन किया, कीर्तन किया, प्रवचन किया। अब और एक जैसे और भी मिसाल दे सकते हैं इतिहास से कि सम्राट अशोक या छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सारे मिसाल जो हमारे पास है जो देखा जाए तो जरूर कीर्तिमान ये बने अभी के हिसाब से जो द्वापर युग से, लेकिन हमारी कीर्तिमान जो अवस्था है, हमारी जो कीर्तिमानता की गहरी परिभाषा है वो ये है कि हम पूरे कल्प में कीर्तिमान बनते हैं। तो जैसे कीर्तन में और एक बात होती है, जब भक्त जो है वो भगवान का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध जो है वो भूल जाते हैं, मैंपन का भाव जो है वो भी वो उस समय के लिए भूल जाते हैं, इतने तन्मय होते हैं, इतनी तल्लीनता से वो भगवान का गीत गाते हैं और एक गीत गाता है और सारा समूह जो है वो उनको साथ देता है। संगम पर बाबा भी मैं समझती हूँ कीर्तनकार बनता है, वो हम सारे उसके राइट हैंड्स बनते हैं, इसीलिए या कहो ब्रह्मा तो ब्रह्मा के हम भुजाएं बनते हैं। अब वो जो देह भान भूलना, मैंपन का भान भूलना, ये जो बात है ना ये भी अभी की है, संगम की है। हम कीर्तिमान बनने वाले बच्चों की है जो बाबा के बच्चे बाबा की याद में अपना मैंपन भूल जाते हैं, देह का भान भूल जाते हैं, विदेही अवस्था को प्राप्त करते हैं। उन बच्चों का गायन भक्ति में होता है जो होता है कीर्तन के रूप में। और इसीलिए प्रश्न ये है फिर से एक बार कि कीर्तन से कीर्तिमान बनते हैं या कीर्तिमान बच्चों का कीर्तन होता है, क्या कहेंगे? दोनों है लेकिन फिर भी
अरे कीर्तन करेंगे तो कीर्तिमान स्थापित होता है।
अच्छा, और क्या विचार है?
कीर्तिमान का कीर्तन होता,
क्योंकि कीर्तिमान होने की या सफलता की एक बहुत सुंदर परिभाषा है। सफलता अर्थात हर कार्य में आनंद की प्राप्ति करना। कीर्तिमान होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए ये जो परिभाषा है वो अगर हमारे बुद्धि में क्लियर है कि हर कार्य में, हर सेवा में आनंद की प्राप्ति। भक्त जो है ना वो इंद्रिय सुखों की प्राप्ति उस समय करते हैं, इसीलिए आपने मंदिरों में देखा होगा कि जब वो तन्मयता से तल्लीन होकर देह की सूद बूद भूल कर जब गाने लगते हैं तो बिल्कुल उसमें हो जाते हैं। देखा है कभी मंदिरों में, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। तो यहां बात आती है हमारी, ऐसे ही जो बच्चे बिल्कुल खो जाते हैं उस समय, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है बच्चे उनका तो है इंद्रिय सुख, आपका है अतीन्द्रिय सुख। तो यह अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति करते हैं वो सचमुच कीर्तिमान होते हैं, उनका ही कीर्तन होता है। तो और एक इसकी विशेषता है कीर्तन की, वो ये जो ज्यादातर महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों में कीर्तन के द्वारा ही लोग जो है ना खेती करते हैं और फिर थक जाते हैं सारे किसान, और फिर रात को वहां सॉरी रात को वहां कीर्तन होता है और कभी कभी तो पूरी रात वो कीर्तन करते हैं। इतना दिन भर वो थके हुए हैं, लेकिन जैसे अभी कहा कि वो पूरी रात भी कीर्तन करते हैं अमृत वेला तक सुबह के हमारे हिसाब से, तो कैसे उनको कौन सी वो शक्ति आती है? वो है कि कुछ समय के लिए जो उनको इंद्रिय सुख मिलता है, वो जो सुध-बुध अपनी भूल जाते हैं, अपने देह भान को भूल जाते हैं, वो ही शक्ति उन्हें चलाती है। और इसीलिए वो अपना सारा जो देह का जो थकान है वो उनकी मिट जाती है, इतनी तल्लीन अवस्था को पाते हैं। तो हम बाबा के बच्चे अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर मुझे सारे कल्प में कीर्तिमान बनना है तो मैं इतनी तन्मयता से बाबा की याद में खोई हुई हूँ, क्योंकि उसके लिए क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। कितना समय योग में बैठे उसकी बात नहीं है, लेकिन जब बैठे जितना भी समय बैठे चाहे वो आधा घंटा हो, लेकिन उस समय मेरी अवस्था जो चार चार घंटे भक्त लोग जो है वो कीर्तन गाते हैं, तो वो मेरी अवस्था ऐसी रही। और एक बात कीर्तन की विशेष है कि सारा कीर्तन होने के बाद वो फिर क्या करते हैं पता है? यहाँ बुक्का लगाते हैं, काला रंग का एक होता है और यहाँ सबको लगाते हैं। फिर जब कीर्तन समाप्ति पर होता है ना, तो वो अपनी जो गाने की आवाज है या जो गीत है उसको उसका स्पीड बहुत बढ़ाते हैं, तेजी से करने लगते हैं। तो हम भी तीव्र पुरुषार्थी से क्या बन जाते? तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। और क्या देखो ना, वो बाद में लगाते हैं, मतलब बाद में वो कहाँ आते हैं सब भक्त भी? आत्मिक स्थिति का तिलक लगाते हैं। ये एक बात। दूसरी और एक बात होती है, वो है कि वो कीर्तन कर जब अंतिम स्तर पर आता है तब वो परिक्रमा लगाते हैं, अपने ही पास ऐसी परिक्रमा लगाते हैं। तो बाबा कहता है मेरे बच्चे जो है वो स्वदर्शन, कल की परसों की मुरली में था कि चाहे रोटियां बेलो, चाहे सब्जी काटो, चाहे कुछ भी कर्म करो, लेकिन मनसा में हमेशा स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। वही जो कीर्तिमान होने वाले संगम पर जिन्होंने बाप को पहचाना, ऐसे बच्चों की जो यादगार है कीर्तन के रूप में, तो वो भी अपने आप में परिक्रमा लगाते हैं। देखो ना कितनी सही नकल की है नहीं? तो ऐसे कीर्तिमान बच्चे जो संगम पर जिन्होंने बाबा को पहचाना, ऐसे कीर्तिमान बच्चों का गायन होता है या कहो कीर्तन होता है, और ऐसे ही हम कीर्तन से कीर्तिमान बनते हैं। तो ये जो हमारा कीर्तन का विचार आया मन में, वो इससे आया कि जो बाबा मुरली में कहते हैं हमेशा, बच्चे मेरे जो भक्त है वो शिव के मंदिर में है या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में है। और बाबा कहते हैं कि बाबा ने चार पांच दिन पहले हिसाब बताया था कि जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वो सबसे पहले, हमेशा बाबा बताते वो सबसे पहले ज्ञान लेते हैं। तो इसीलिए हमारा यह विचार चला कि हम क्यों ना कीर्तन के द्वारा बाबा के ही बच्चों को जो पुराने भक्त हैं उनको हम क्यों न ज्ञान दें, क्यों कीर्तन के द्वारा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मुझे मराठी भाषा आती है और आपको मैं मराठी में कुछ कहूँ, लेकिन यहाँ के जो मेरे सामने जो बाबा के बच्चे हैं या मेरे सामने जो है वो, उनको मराठी जरा भी नहीं आता। मैं कितना भी तन्मयता से, बहुत गहराई से, बहुत स्पष्टता से उनके सामने वो ज्ञान रखूं, लेकिन उनको वो भाषा आती नहीं है ना। तो क्या है कि मंजू बहन बोल रही है ट्रांसलेशन, लेकिन वहाँ ट्रांसलेशन की ये नहीं होती, फैसिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए उनकी ही भाषा में हमें ज्ञान देना चाहिए। भक्तों को ज्ञान देना है तो भक्ति की भाषा में देना चाहिए, क्योंकि मकसद हर एक बच्चे का वही होता है कि जो भी बिछड़ी हुई आत्माएं हैं उनको परमात्मा से मिलाए। यही एक अंदर ही अंदर अर्ज होती है, यही हर एक की दिल की आवाज होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक पैकेज किया, जो बहुत समय से बाबा ने ही उसको कह सकते हैं कि वरदान दिया। और सबसे पहले नासिक में हमने 3 दिन में 13 मंदिरों में ये बाबा की सेवा की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि कभी कभी कल की मुरली में शायद था कि क्या होता है, क्यों अगेंस्ट होते, क्योंकि आप भक्ति छोड़ देते हो। तो उनको ये एहसास हो कि हम आपके ही है, आपके जैसे ही है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। क्योंकि बाबा ने फिर विस्तार में कहा, भक्ति आप पे ही छूट जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान आएगा, समझ आएगी, तो उन गुड़ियों की पूजा लगेगी वो। तो उस हिसाब से हमने, क्योंकि नासिक जो है वो वहाँ सिंहस्थ होता है 12 साल में, वहाँ 12 साल के बाद वहाँ पर्वणी होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं उसकी, उसके विस्तार में न जाते हुए, तो पहले वहाँ सेवा हुई, बहुत अच्छी बाबा ने सक्सेसफुल कराई। उसके द्वारा कई बच्चे जो है वो बाबा के ज्ञान में जुड़ गए, उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर धीरे धीरे पूना में कहो या आसपास के गांवों में कहो, वो भी बाबा ने सेवा कराई। और अभी अभी जब हम 3 महीने नैरोबी में गए थे, तो नैरोबी में भी बाबा ने 3 मंदिरों में बहुत अच्छी सेवा कराई, एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर, एक राम सीता का मंदिर और एक सनातन धर्म का मंदिर। तो कराने वाला वो है, और समय के हिसाब से जैसे बाबा कहता है कि हमें भी अपना रूप बदलना है या परिभाषा बदलनी है, या बाबा कभी कभी कहता है नब्ज देखकर हमें ज्ञान देना है, युक्ति युक्त होकर हमें ज्ञान देना है। तो इसीलिए हमने पैकेज किया कि ज्ञानेश्वर जी कीर्तन करते हैं, उसके ऊपर प्रवचन फ्री, ज्ञान और भक्ति बाबा कहता है, ज्ञान के ऊपर भक्ति फ्री, भक्ति के ऊपर ज्ञान फ्री। तो इस प्रकार से ये चल रहा है, और इस हिसाब से मैं समझती हूँ कि बाबा के इस कार्य को बाबा ही चला रहा है, कराने वाला वो है, और हमारे द्वारा वो उसको करवाना है जो वो कराता है। तो इस प्रकार से हम सब बाबा के बच्चे, कीर्तिमान बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, तेजी से पुरुषार्थ करने वाले बच्चे, सारे कल्प में न केवल आधा, लेकिन सारे कल्प में कीर्तिमान बनते हैं, कीर्तन योग्य बनते हैं, गायन योग्य बनते हैं। ओम शांति।